हमारे पास अब आखिरी सेशन है, लेकिन आज मैंने जो सोचा हुआ था कि हम लोग जो मर्जी भी कर लें, लेकिन हकीकत है कि हम लोग औरतें और हमें अपने घर चलाने के लिए शौहरों को भी साथ रखना है, बच्चों को भी। तो हम पढ़ते हैं कि बेटी को रुख्सती के वक्त एक अरब माँ की नसीहतें, पेज नंबर 80 है, कहानी का नंबर 24 है। आलम अरब के इलाके कंदा, यमन के हुक्मरान अमर बिन हजर अल कंदी को वहाँ के एक दीनदार शख्स औफ बिन मुस्लिम शेबानी की बेटी उम्मे एयास की खूबियाँ और इसके दीनी मियार का पता चला, तो इसने उम्मे एयास के वालिद की बिरादरी की इसाम नामी एक औरत के जरिए से इसको पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ, इसलिए अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दें। देखिए, यहाँ नोट कीजिए कि यही सही तरीका है आज के दौर में या कल के दौर में। अगर किसी लड़की पे नजर पड़ जाए या उसकी किसी खूबी का पता लग जाए या उससे आप मुतासिर हैं, तो उसके बाप से दोस्ती करें, ना कि उस लड़की से करें। ये जो आज डायरेक्ट डायलिंग शुरू हो जाती है और आपस में सेटिंगे करके कहते हैं कि आप अब्बा से पूछते हैं, उसमें गड़बड़ें शुरू होती हैं। और कोई माँ बाप भी बेवकूफ नहीं होते, पैगाम भेजने वाला लड़का अगर मुनासिब है तो वो इस बात को जरूर कंसिडर करेंगे। तो इन्होंने लड़की से नहीं रब्ता किया बल्कि उसके बाप से किया। उम्मे एयास के वालिद ने कुछ सोच विचार के बाद इसके पैगाम निकाह को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए अपनी लड़की का निकाह इससे कर दिया। निकाह के बाद जब रुख्सती का वक्त आया तो उम्मे एयास की वालदा उमामा बिनते हारिस ने बेटी से तन्हाई में कुछ गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान इसने बेटी के मुस्तकबिल के बेहतर इंजाम के लिए इसे जो नसीहतें की, वो न सिर्फ दीनी और दुनियावी एतबार से बहुत बेहतर है बल्कि इनमें अरबी अदब की चाशनी और लज्जत भी मौजूद है। हम इसको हम देखेंगे। ये याद रखिएगा कि अरब बद्दू औरतें सीधी सादी, कोई कॉलेज से पढ़ी हुई, यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन आप अब जरा उनकी बातें देखिए। मैंने अरबी में भी पढ़ी हुई है, इंतहाई खूबसूरत लफ्ज है उनके, लेकिन यहाँ हम अब इसका उर्दू का तर्जमा देखते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को ससुराल रुख्सत करते हुए उन्होंने ये बातें की। चुनाचे जब रुख्सती के वक्त दुल्हन को पालकी में बिठाकर खावन के घर को ले जाने का मरहला आया तो उमामा ने बेटी को मुखातिब करके कहा, अब इस वक्त सुनते वक्त आप सब अपने ऊपर लें, ये मेरे लिए, ये मुझे मेरी माँ कह रही है, और कोई बात नहीं अगर आपकी शादी को 10-20 साल भी हो गए, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट टू लेट। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोला और हम सब अपनी इसलाह कर सकते हैं जब भी चाहें। तो इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि इन सारी चीजों को पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं आपके लिए भी जरूर कोई गाइडलाइन होगी। कहती है, बेटी पहले तो जिस माहौल में रह रही थी वो अब तुझसे छूट गया है और तू इस माहौल से निकल कर दूसरी जगह जा रही है। तेरा वो नशेमन भी तुझसे दूर हो गया जहाँ तू परवान चढ़ी, जहाँ अकलमंद को तो सहारा और तकवियत हासिल थी ही। अगर तुझसे कोई गफलत सरजद हो जाती थी तो भी तुम्हें एक मुकाम हासिल था। अगर कोई औरत शौहर से महज इस बिना से बेनियाज होती, इसके माँ बाप भी शदीद जरूरत के बावजूद एक दूसरे से बेनियाजी बरतते थे, तो मैं भी तुम्हें लोगों में सबसे ज्यादा बेनियाज नजर आती। या अगर औरत अपने वालदैन की दौलतमंदी और इनकी वालेहाना मोहब्बत की वजह से बेनियाज होती, तब भी सबसे ज्यादा मैं अपने शोहर से बेनियाज और लापरवाह होती, मगर तुम देखती हो कैसा नहीं। लेकिन फिल हकीकत जिस तरह औरतों को मर्दों के लिए पैदा किया गया, इसी तरह मर्द औरतों के लिए पैदा किए गए। आप इस पॉइंट को समझे, यानी कि तुमने क्या मेरे अमल में देखा कि कभी मैं तुम्हारे बाप से बेनियाज रही, या कभी मैंने अपने मैके का मान किया? जब मैं नहीं हुई तो तुम कैसे सोच सकती हो? यानी इसमें पैगाम क्या कि ये मैके का घर था जहाँ तुझे प्यार मिला ही हुआ था, ये तेरा घर था, लेकिन अब जहाँ तू जा रही है वहाँ तुझे शऊर के साथ जीना है। तुम उनसे बेपरवाह नहीं रह सकती, इसको अपनी जुबान में हम कह लें कि तुझे उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और यहाँ से यकीन करें कि इतना दिलों में गुजरने का रास्ता है कि शादी के बाद एक बच्ची, ना सिर्फ ये कि शौहर या सास या ससुर, घर के हर बंदे के अंदर इंटरेस्ट ले। 5-10 मिनट तन्हाई की मुलाकात, जायरा के नंदे हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं, ऑफकोर्स देवर हैं या गैर महरम है तो उनके साथ तो एक हिस्सा होगा, उनके साथ भी मोहब्बत आप कर सकते हैं लिमिट्स के अंदर रहकर। उनको आपके अमल से पता चले कि आपको उनकी कितनी केयर है। मिसाल है, आपके देवर सुबह बगैर नाश्ते के निकलते हैं, अगर आप भाभी हैं आपको पता है सुबह इतने बजे निकलते हैं, आप उससे आधा घंटा पहले उठ के एक रोटी पका कर खाना कुछ पैक करके रख दें और साथ कह दें कि ये आप खाना साथ ले जाएं, दैट्स इट। कोई मोहब्बत की पींगे नहीं है, लेकिन मोहब्बत जीती है, केयर जीती है। तो यही वो बात बता रही है कि तुमने उनके अंदर दिलचस्पी लेनी है। अब तेरा रुख एक मानूस माहौल और वतन से ऐसे नशेमन की तरफ है जिसके माहौल से तू आशना नहीं है। ऐसे ही है ना, पता ही नहीं होता ससुराल में कौन कैसा है, जितना मर्जी पहले पूछ लें। جو بات جا کے پتا چلتی ہے وہ پہلے نہیں بتاتی. یہ جو خواب دیکھے ہوتے ہیں نا, اس کے ٹوٹنے کی بہت بڑی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے باتیں نہیں جانتے. جیسے کسی سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں, تو مجھے پتا چلا کہ کوئی ایسی بات ہے, تو وہ پتا چلا یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ادھر, تو کہتی ہاں باقی سب چیزیں ٹھیک تھی, یہ دو تین باتیں ادھر ادھر کی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا, ہنس کے کہا, میں نے کہا دیکھیں یا تو آپ باتیں پہلے پتا کر لیں یا بعد میں پتا چل جائیں گی. ہوتی سب جگہ, جو قریب رہنے والے رشتے ہوتے ہیں ہم ان کو اس لیے اوور لک کر دیتے ہیں کہ ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں ویسی. دور سے کوئی بتاتا ہے وہاں ہم چلے جائیں گے کر دیں گے, وہاں جائیں گے تو کل جب ان سے ملیں گے تو وہاں 10 قسم کی باتیں ملیں گی. تو زندگی میں یہ اصول یاد رکھیں کہ پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کو ہے. تو جب سسرال میں لڑکیاں جاتی ہیں تو وہاں ناشنائی ہوتی ہے, وہاں تجھے ایک ایسا ہم نشین شخص ملے گا جو تیری طبیعت اور مزاج کو پہلے سے جانتا نہیں ہے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ شوہر کی طرف ہے. آج سے تیری گردن اور تیرا تمام بدن اس کے زیر نگین ہو چکا, یعنی اب اسے تم پر برتری حاصل ہے, اس لیے تو وہاں اس کی خدمت گار بن کر رہے, نتیجتاً وہ بھی تیرا تابے دار غلام بن جائے گا. یہ ہے اصل نسخہ. پہلے آپ خدمت کریں گی تو آپ کو بھی خدمت مل جائے گی. اگر کسی کے اعلیٰ نصب اور زیادہ عقل کی وجہ سے نصیحت چھوڑی جاتی تو میں ضرور اسے چھوڑ دیتی اور تجھے ہرگز نہ کرتی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بتا رہی ہیں کہ نصیحت پھر بھی کرنی ہے حالانکہ میں تجھے اچھا سمجھتی ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نصیحت عقل مند کے لیے یاد دہانی, جبکہ بے سمجھ اور بے عقل مند کو بطور تنبیہ کی جاتی ہے. اس لیے میں تمہیں یہ نصیحتیں کرتی ہوں, یعنی بیٹی کو اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ مجھے پتا ہے تم عقل مند ہو, میں پھر بھی تمہیں نصیحتیں کروں گی. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں تجھے 10 ایسی اچھی عادات بتاتی ہوں جنہیں اپنانا تمہارے لیے بہت ضروری ہے, یہ وہاں تیرے بہت کام آئیں گی. تو اب آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا 10 ٹپس ٹو سیو دا ہوم اور فیملی. یہ 10 باتیں آپ بھی اپنی 10 انگلیوں کی پوروں پہ یاد رکھ لیں ایک ایک کر کے, کہ گھر کیسے بستے ہیں اور گھروں کا ماحول خوبصورت کیسے ہوتا ہے, اور شوہر بیوی کا اچھا تعلق ہے تو انشاءاللہ بچے تو پھر اچھے ہوں گے. پہلی ٹپ کیا ہے؟ وہاں تمہاری پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ قناعت پسندی اور سادگی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے انکسار سے کام لینا, کیونکہ قناعت سے دل کو راحت ملتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز جو لائے شکر ہے, سادگی رہیں, مطالبے نہ کریں. یہ چاہیے میں تو اس برانڈ کی لپسٹک لگاتی ہوں, میں تو اس برانڈ کا جوتا پہنتی ہوں, میرے گھر میں تو یہ وہ, یہ مردوں کو نہیں پسند آتا. تو پہلے آپ اپنے انگوٹھا جو ہے نا اس کی ٹپ پہ لکھ سکتی ہیں قناعت پسندی, اسی میں سب کچھ آ جائے گا. جو لے آئیں شکر ہے, جو ان کو پسند وہ آپ کو پسند. دوسرا, اس کی ایک ایک بات کو توجہ سے سننا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا ہر حال میں خیال رکھنا, اس سے تمہارا شوہر خوش رہے گا. اطاعت اور فرما برداری, بلکہ آپ اس دوسری ٹپ کو لکھیے, اس کی بات کو توجہ سے سننا. دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ بعض سسٹرز کے دماغ میں اپنا اتنا بڑا پن سوار ہوتا ہے کہ شوہر کی بات سنتی بھی نہیں ہے, غور سے نہیں سنتی. وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کوئی کبھی کام کی بات کی ہے جو یہ آج کریں گے, بس ایک ہی کام کی بات کی تھی, قبول ہے قبول ہے, اس دن یہ بات اچھی کی تھی انہوں نے. آپ کے شوہر میں بہت خوبیاں ہیں, اس لیے ان کی بات کو غور سے سنیں. تیسری ٹپ, شوہر کی نگاہ کا بھی خیال رکھنا تاکہ تجھے وہ جب دیکھے تو اس کی طبیعت بدمزہ نہ ہو. اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی بات بھی سرزد نہ ہونے دینا. جی کیا میسج ہے اس میں؟ کیا تیسری ٹپ ہے؟ شوہر کے لیے خود کو سجانا. ہم کدھر ہوتے ہیں, یہاں سے گھر جاتے سب سے پہلے کیا حال حلیہ اختیار کرتے ہیں, بعد میں بات کروں گی ذرا گھر کے کپڑے پہن لوں, وہی 4 سال پرانے کپڑے جس کے رنگ بھی اڑے ہوئے اور پتہ نہیں اس میں کھانا بھی صبح پکایا, اور شوہر بیچارے کا کیا حق ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. آج عورتیں تیار ہو جائیں تو مرد پوچھ لیں کدھر کا ارادہ ہے بیگم, کہاں جا رہی ہیں, بچے بھی پوچھتے ہیں ہم کہیں جا رہے ہیں ماما. تو اپنے شوہروں کے لیے تیار ہو, پھر کوئی دوسرا بھی دیکھ لے تو اور بات ہے. کتنی عورتیں جو اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں, اللہ ہو کوئی بےچارے شوہر, اللہ ناروے کے شوہروں پہ رحم کرے. تو آپ ان کے لیے تیار ہوا کریں.
اس میں یہ ہے کہ اب وہ ہمارے ماحول میں اتنا ہو چکا ہے کہ آدمی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے. میں میری دوست ہوتی ہیں ابوظہبی میں, میں اس کے پاس گئی, وہاں پہ جو آپ نے کہا وہ میں نے پریکٹیکلی لوگوں کو دیکھا. تو میں واپس آئی, بڑے میں نے خوب کپڑے شام کو پہنے, کانچے پہنے, سارا کچھ کر رہی ہوں. تو میرے میاں نے تو دیکھا ہی نہیں, تو میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں میں نے یہ کیا. تو وہی بات تھی کہ ان کے لیے یہ ایک نئی بات تھی.
دیکھیے آپ کی ان کا آپ نے سنا, پیچھے آواز نہیں گئی ہوگی, یہ کہتی ہیں کہ یہ دبئی گئی اور اپنی کسی وہاں عرب فرینڈ سے یہ باتیں سن کے متاثر ہوئی کہ شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے. پھر گھر جا کے کپڑے پہنے, بندے پہنے, تیار شیار ہوئی, अब मियाँ के आगे पीछे फिर रही है, मियाँ इनको देख ही नहीं रहे, तो ये बड़ी डिसहार्ट हो गई। लेकिन आप ये सोचिए कि वो समझे ही नहीं होंगे, वो समझे होंगे बेगम किसी दोस्त का इंतजार कर रही है, इन्होंने अभी किसी पार्टी में जाना है, तो मैं इसको देख के क्यों अपने मिजाज को खराब करूं। तो घबराए नहीं, जब भी ऐसा कभी वक्त हो एक दफा फिर करें और उनको बता दें। और यकीन करें, मर्दों को बताना भी पड़े तो बता दें कि मैंने कुछ पहनना है, देख लें, ये मैंने आपके लिए पहनना है, जल्दी से देख लें ताकि मैं अब चेंज कर लूं। तो मर्द बड़े भोले होते हैं इन चीजों में। आप करते रहें, आपने तो अजर के लिए किया ना, लेकिन असल में जब कोई काम कभी किया नहीं होता तो फिर अब आज आप मर्दों को ये शिकवा कर दें कि मैं पहनू तो देखती नहीं, उनको ये यकीन दिलाएं कि मैं आपके लिए पहनती हूँ, जो झूठ होगा वो भी पकड़ा जाएगा। बहरहाल, अब ये तीसरी टिप का आपने क्या लिखा नाम, कि शौहर के लिए सजना। आगे चलते हैं, इसकी पसंदीदा खुशबू का भी इहतमाम रखना। तेरे बदन से इसे ऐसी कोई महक ना आने पाए जिसे ना पसंद या ना गवार हो। तुम्हारा खावन तुम्हें साफ सुथरी और खुशबूदार हालत ही में देखे। तुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि खुशबू अगर मौजूद ना हो, सोचिए आप, सुनिए कितनी अक्लमंद माँ है। पता चला बेटी चली गई परफ्यूम खरीदने और खाना मियाँ सब खुद पका रहे हैं, आपके लिए लगानी थी खुशबू, खरीदने शॉपिंग चली गई। नहीं, कहती है अगर खुशबू मौजूद ना हो तो फिर पानी सबसे ज्यादा खुशबूदार चीज है, यानी नहा लो, गंदगी बूंद जिस्म की दूर हो जाएगी, इससे नहाओ और अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करो। नीस खूबसूरती पैदा करने के लिए तेरे पास सुरमा मौजूद है, यानी ये तो किसी पार्लर से नहीं लाना पड़ता, ये तो घरों में होता ही है। और कहती है कि ये भी बेहतरीन चीज है, जब वो गमजदा हो जाए तो इसके सामने बिल्कुल किसी खुशी और राहत का इजहार न करना। पता चला आज मेकअप की डिप सीखे गए, घर गए, मियाँ बेचारे जॉब से ले ऑफ होके घर आके मुंह लटकाए बैठे, आप पूरा फुल मेकअप करके आ जाए तो पता चले कि आपके जॉब के जाने पे मैं खुश हो रही हूँ। वो कहती है शौहर अगर खुश नहीं है तो तुम ना खुश उनके सामने हो कि उनको चिड़ो कि तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं है। ऐसे मौके पर इनकी दिलजोई जरूरी है। इसी तरह अगर वो खुश नजर आए तो इस मौके पर कोई रंजो गम की बात हरगिज़ न करना कि इसकी सारी खुशी दूर हो जाए। कितनी बड़ी टिप है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, यानी खुशबू भी लगाना लेकिन साथ खास तौर पर शौहर के मूड का ख्याल रखना कि शौहर का मूड देखे। अकलमंद बीवियों को शौहरों के मुंह को देखते ही पता लग जाता है कि वो इस वक्त किस चीज के तलबगार है, उनको भूख लगी है, उनको खाना चाहिए, उनको आराम चाहिए, उनको क्या चाहिए। बिल्कुल, जब वो सैड हो तो उनको कम्फर्ट दिया जाए तो इंशाल्लाह उससे भी फायदा होगा। और यकीन करें कि आज फिर इस बातों को सुन के हमें ये एहसास होना चाहिए कि जिस तरह हम सोच रहे थे कि हम बड़ी अच्छी बीवी हैं, मुझे लग रहा है कि शौहर बड़े अच्छे हैं जो हमारे साथ गुजारा कर रहे हैं। अगर इन चीजों पे अमल अपना ना दिखे तो हम अपने ऊपर देखें कि हम वाकई अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पांचवीं टिप, शौहर के सोने और उठने के औकात का भी ख्याल रखना, क्योंकि किल्लत नींद से शदीद गुस्सा पैदा हो जाता है। शौहर की नींद ख्याल रखना। अब बच्चा रो रहा है, आपने तो जागना ही है, तो मियाँ साहब बेचारे जो काम करके आए हैं तो अगले दिन फिर सुबह 7 बजे जाना है, उनको क्या सजा है? आप दूसरे कमरे में बच्चे को ले जाएं। बस औरतें कहती है दिन में मैं संभालती हूँ, शाम को ये संभालेंगे। तो आप सोचिए कि आप तो संभाल के सो जाएंगी लेकिन वो तो अगले दिन फिर काम पे जाएंगे। अक्सर मर्द जो गुस्सा करते हैं ना, उसकी बहुत बड़ी वजह बेआरामी होती है। थके हुए घर में आए, मौका ना देखा बात कर दी, ये भी एक बहुत बुरी आदत होती है औरतों की, शौहर के मूड का ख्याल रखे बगैर उनको बात कर देती है। हाँ? तो शौहर की नींद का ख्याल रखना, ये भी आप नोट कीजिए। छठी चीज है, इसके खाने पीने के औकात और खाने पीने में पसंद और नापसंद को मलहूज रखना भी तुम्हारे फराइज में शामिल है, क्योंकि तादेर भूख से कुव्वत बर्दाश्त खत्म होने लगती है, जिसका नतीजा गुस्से की आग की सूरत में निकलता है और ये आग बस दफा दोनों तरफ के लोगों को भस्म कर देती है। खाने पीने का ख्याल, पता चला वो बेचारे टोस्ट बटर खा के थक चुके हैं। आप देखिए कि अच्छी बीवियां सब कुछ करके भी घर को मैनेज कर लेती हैं, और बेकार बीवियां घर में रहते हुए भी बिस्तर से नहीं उठती, कहती हैं आपने सब मेरी भी चाय बना के छोड़ जाए। शौहर का खाना पीना, ये अल्लाह ने हमें जिम्मेदारियां दी है ना, तो फिर इसको अपने ऊपर लिख लीजिए कि शौहर के खाने। यकीन करें मर्दों को चाहिए क्या होता है, कभी आपने सोचा क्या डिमांड्स है इन बेचारों की? सुबह अगर आप नाश्ता बना दें तो रात को एक दो वक्त का खाना है, सुबह भी लाइट खाते हैं तो शाम का खाना है, कपड़े धुले हुए दे दीजिए, घर साफ हो, वो बेचारे तो इतना मांगते भी नहीं जितना आप उनसे मांगते हैं। सिर्फ ये चंद चीजों को मेंटेन कर लें, और जो औरत अपने शौहर की पसंद का ख्याल खाने में रखती है जो मर्जी मनवाए। हमारे बड़े क्या कहते थे, एक टिप याद आ गई है कि शौहर के दिल में घुसो पेट के रास्ते, पकवान पकाओ और खिलाओ। आज कहते हैं वो जिंदाबाद मैकडोनल्ड और फुलां फुलां बाहर के खाने खिला देते हैं। एक औरत का अच्छा खाना पकाना और शौहर के मिजाज का पकाना, ये बहुत खूबी की बात है। आप सीखें आपके मर्दों को क्या पसंद है, कैसी चीजों से वो खुश होते हैं, फिर उस ख्याल रखिए, इंशाल्लाह इससे होगा। वरना भूख की वजह से बहुत सारे शौहर गुस्सा करते हैं, उनको भूख लगी हुई थी, आप आगे से कोई नखरा दिखा दें तो वो हो सकता है फिर कोई गलत बात मुंह से निकाल दे। फिर इसी तरह सातवीं टिप क्या है, बेटी तुम पर अपने शौहर के माल की हिफाजत फर्ज है, इसलिए अच्छी तरह समझ लो कि माल की बेहतरीन निगहदाश्त हुस्न इंतजाम से ही मुमकिन है। कि शौहर के साथ क्या करना है, माल की हिफाजत। अब इसका आप टिप क्या लिखेंगे, फजूल खर्ची नहीं करनी, उस बेचारे के नाम पर इतने लंबे लंबे क्रेडिट कार्ड के बिल ना आ जाएं कि बेचारा परेशान हो जाए और बीवी से कार्ड ही वापस ले ले। लेकिन फजूल खर्ची मर्दों को अच्छी नहीं लगती, आपको भी नहीं अच्छी लगती, अल्लाह को नहीं पसंद तो उनको कहाँ पसंद होगी। फिर आठवीं टिप के, अभी आप कौन सी उंगली पे आ गए, सातवीं थी अब आठवीं उंगली पे जाइए, तुम्हें अपने शौहर के अहल अयाल और इनके मर्तबे का भी लिहाज रखना होगा, वरना बसूरते दीकर तुम तरह तरह की मुसीबतों में मुबतला हो जाओगी, इसलिए शौहर के अहल अयाल की हिफाजत तुम्हें हुस्न तदबीर से करना होगी। यानी ससुराल के साथ अच्छा ताल्लुक, बहुत सारी औरतें इस राज को नहीं जानती कि शौहरों के घर वालों से प्यार करके या उनकी इज्जत करके आप शौहरों की मोहब्बत ले सकती हैं। अल्लाह के लिए करना है सब कुछ, अल्लाह की रजा समझकर। लेकिन देखिए, मैं अक्सर एक जो बोलती हूँ आज फिर बोल देती हूँ कि मदर इन लॉ से मोहब्बत करने की कोई और वजह ना दिखे तो एक वजह बहुत बड़ी है कि वो आपके शौहर की माँ। आज आपके पास जो कुछ है वो किधर से आया? अमूमी तौर पर मैं नहीं कहती कि आप सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं, खुद को सेल्फ मेड कहते हैं, आई डोंट लाइक दिस थिंग, लेकिन आप देखिए कि जो शौहर का स्टेटस है वही औरत का होता है। मैके से बहुत कुछ मिल भी जाए लेकिन शौहर का स्टेटस तो साथ ही है, गाड़ी किसकी है, घर किसका है। तो अगर उस मर्द की माँ के साथ आप प्यार कर लेते हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो ससुराल के साथ अच्छा ताल्लुक रखना, ये शौहरों की मोहब्बत दिलाता है। फिर नवी चीज, अपने शौहर की फरमाबरदारी तुम पर फर्ज है और नागुजीर भी, इसलिए इसकी भी कभी हुक्म अदूली ना करना। अगर तुमने इसके सामने हुक्म अदूली और बगावत का रवैया अख्तियार किया तो फिर इसका सीना गुस्से से भड़क उठेगा। यानी इसको आप लिख लीजिए, बदतमीजी नहीं करनी। यानी बदतमीजी सबसे आसान लफ्ज है, शौहर के साथ कभी शाउट ना करें, कभी अपने बॉडी एक्शन से ऐसे काम ना करें कि उनको भी बाद उस वक्त तो वो पी जाए और वो गुस्सा बाद में आपके ऊपर निकालें। फिर इसी तरह दसवीं और आखिरी टिप इसकी, तुम्हारे राज तुम्हारे शौहर के राज हैं और तुम्हारे शौहर के राज तुम्हारे राज हैं, इसलिए इसके किसी भी राज को कभी किसी मर्द और औरत पर जाहिर ना करना। इसके अलावा तुझे ये भी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तमाम चीजें तो अपने शौहर से इस वक्त तक हासिल ना कर सकोगी जब तक तो अपने पसंदीदा या नापसंदीदा तमाम मामलात को अपने शौहर की ख्वाहिशात और रजामंदी के तहत ना कर दो। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात को बेहतर करे और तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे। तो दसवीं बात क्या है कि राजों की हिफाजत। बयान किया जाता है कि जब वो अपने शौहर के यहाँ पहुंची, इसने वहां अपनी वालदा की नसीहत भरपूर अंदाज में अमल किया तो इसके नतीजे में इसे अपने शौहर का एतमाद भी मिल गया और इससे मोहब्बत और इज्जत भी पाई। तो ये थी वो माएं जो अपने बच्चियों को अच्छी नसीहतें करती थी और ये थी वो बेटियां जो अच्छी अच्छी नसीहतों को लेकर अपनी माओ के घर से जाती थी और इनके घर हकीकत में जन्नत के घर थे। सीधी साधी औरत, एक बद्दू औरत अपनी बच्ची को क्या सिखाती है, इसमें हम सबके लिए भी सबक है। कोई बात जो इसको सुनने के बाद आप शेयर करना चाहें? ये तो 10 टिप है लेकिन ये 120 टिप्स भी रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे एक लेक्चर है, अगर आप गूगल में डाल के देखेंगे 60 टिप्स टू प्लीज योर हस्बैंड या सक्सेसफुल लाइफ। तो ये थी हमारी एक छोटी सी ये मुलाकात। आप देखिए कि कुछ लोगों को लग रहा था 4 दिन बहुत ज्यादा है, क्या आपको 4 दिन ज्यादा लगे, क्या आप बोर हुए? ऐसे ही लग रहा है कि शायद आज भी अभी 1-2 दिन ही हुआ है, लेकिन पूरे कुरान का सफर ही है। आप सबको ये दावत दूंगी, ये तो एक स्पेसिफिक बुक कहते हैं, जब कुरान खुलता है तफसीर होती है, उस वक्त तो वक्त का बिल्कुल ही एहसास नहीं होता। तो जरूर हम सब इस किताब को अपने लिए गनीमत समझें कि ये रास्ता हमें दिखाई। हमारे वो सारे गेस्ट जो पहली दफा इधर आए हैं या पहले कभी उनको इत्तेफाक नहीं हो सका, उन सबको दावत है, आप रिसेप्शन से इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। वीकडेज कोर्सेज, वीकेंड कोर्सेज, इवनिंग कोर्सेज, इवन साइट्स के कोर्सेज, कोई आपके इलाके के करीब है आप शुरू करें। कल अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रोवनर के इलाके में एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, हफ्ते में 2 दिन का शाम के वक्त, तो आप लोग उसमें साइन कर सकते हैं। इधर क्लासेज हैं, वीकडेज में इधर एक कोर्स है जिसके लिए मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। और वो क्या है कि जब कुरान मुसलसल सुनते हैं और थोड़े से अरसे में सुन के पूरा अपने अंदर डालते हैं ना, उसका असर ही कुछ और होता है। तो यहाँ हमारे पास सुबुल इस्लाम के नाम पर वीकडेज में एक क्लास होती है मंडे से फ्राइडे, थोड़े से वक्त में आप कुरान सीख के फिर अपनी जिंदगी को अपने असूलों पर चला सकते हैं। बच्चों वालों के लिए बेबी सिटिंग की भी सहूलत मौजूद होती है और बाकी चीजों की भी, तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिए इस चीज को लेके जाएं। और हमेशा वेलकम है। वीकेंड पे सैटरडे संडे दो दिन की क्लास इधर होती है, 10 से लेकर 2:30 बजे तक होती है। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज, वो लोग जो कहीं नहीं जा सकते वीकडेज की वजह से, काम करते हैं या जॉब पढ़ते हैं, तो वो भी लें, कहीं ना कहीं अपने आप को रखें। सर ऑनलाइन पे क्लासेज अभी हमारे साथ, ऑनलाइन पे भी कुछ साथियों ने ये प्रोग्राम सुना है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि वो हम सबको बेहतरीन माएं बनाए, बेहतरीन बीवियां बनाए, और सबसे बड़े अल्लाह के बेहतरीन बंदे बना दे। जज़ाकअल्लाह खैर। आप सब, आपसे वादा किया था कल आपको वीडियो दिखाएंगे, जो कल भी शेयरिंग आई थी एक बच्चे की। आइए देखते कि किस तरह हम बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखा सकते हैं, कि जब बच्चों से दूसरे बच्चे कोई चीजें छीनने की कोशिश करें तो आप अपने बच्चों को क्या मैसेज दे सकते हैं। इतनी अब आप देखिए छोटा सा क्लिप है ना, लेकिन इस बच्चे की सोच बदल गई है ना। पहले ये लड़ने इस बात पे लड़ रहा है, तो हम इनकी मासूमियत को कायम रखें। जज़ाकअल्लाह खैर।